ओम शांति। स्वस्थ जीवन की आप सबको शुभकामनाएं। मैं जो समय दिया गया है उसके अंतर्गत सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर ऑफ द हेल्थ दोनों को कंबाइन करूंगा, क्योंकि आजकल हेल्थ केवल एक फिजिकल हेल्थ ना रह गया है, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल हेल्थ भी हमारे शरीर को इफेक्ट करते हैं और उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के समय में जो चैलेंजेस हैं, अनसर्टेन सिचुएशंस हैं, अननोन सिचुएशंस हैं, ये दो चीजें 21st सेंचुरी का हॉलमार्क है, अनसर्टेनिटी एंड अननोन। कुछ नहीं मालूम किसको कहां क्या हो सकता है, एनी टाइम एनी पर्सन कैन गेट एनी प्रॉब्लम। इन सब को देखते हुए हमें क्या करना है, सो वन नीड टू एम्पावर फ्रॉम विद इन। जब तक हम अपने को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, एम्पावर नहीं करेंगे, तो हम उन सिचुएशंस को ठीक तरह से फेस नहीं कर सकते और उन अपॉर्चुनिटीज जो हमारे पास आती हैं उनको ठीक तरह से पहचान नहीं पाते, और जिसके कारण हमारे चॉइसेस अफेक्ट होते हैं। लाइफ इज अ गेम ऑफ चॉइस एंड द चॉइस डिपेंड ऑन आवर ओन थिंकिंग। अगर चॉइस अच्छी है तो मैं मैच जीत सकता हूँ, चॉइस अच्छी नहीं है तो मैच हार सकता हूँ। दैट इज वाई वी नीड टू एम्पावर अवर सेल्स। नेक्स्ट, एक रिवोल्यूशन ब्रेक थ्रू हो रहा है वर्ल्ड में। जो मेजर ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हुए, फर्स्ट वॉज बाय हेनरी फोर्ड व्हेन हिज कार वॉज इंट्रोड्यूस। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने 1908 में ट्रिलियन डॉलर बिजनेस किया। नेक्स्ट ब्रेक थ्रू वॉज 1981 व्हेन आईबीएम इंट्रोड्यूस द कंप्यूटर, पीसी कंप्यूटर। अब लोग सोच रहे हैं कि व्हाट विल बी द नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर आफ्टर आईटी, क्या होगा। तो ज्यादातर जो लोग सोच रहे हैं वो ये सोच रहे हैं कि मोस्ट लाइकली इट विल बी हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हेल्थ, सेल्फ रिलायंसी, ये सब अब नेक्स्ट ब्रेक थ्रू होगा। इसलिए इंडिया में भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक बहुत बढ़ता जा रहा है, पर्टिकुलरली हेल्थ टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म काफी जनरेट मनी कर रहा है, बाहर के लोग भी यहां आकर सर्जरी करा रहे हैं। अब ये एक बहुत रियल स्टोरी है विच विल कन्वे द मैसेज टोटल व्हाट आई एम गोइंग टू कन्वे। एक मिस्टर ऑर्थन गार्डन है, बहुत अच्छे राइटर हैं, द टर्न ऑफ द टाइड। उनको भी अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर उसको कहता है कि आप बचपन की एक ऐसी जगह जाना जहां आपको बहुत अच्छा लगता था, यू स्पेंड अ डे देयर, बट डोंट कैरी एनीथिंग एक्सेप्ट फूड। खाना ले जा सकते हो पर मोबाइल नहीं, फ्रेंड नहीं, बुक नहीं, खाली खाना आप वहां ले जा सकते हो, स्पेंड द डे। एंड ही गिवन हिम फोर प्रिस्क्रिप्शंस, चार प्रिस्क्रिप्शन उसको दिए। पहला प्रिस्क्रिप्शन उसने 9 बजे खोला, वो ओशन के पास गया, समुद्र के पास गया, रेत के ऊपर लेट गया। बचपन में उसको ओशन बहुत अच्छा लगता था। और पहला प्रिस्क्रिप्शन खोला 9 बजे, उसमें था लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। उसने कहा क्या सोचना है, क्या मुझे सुनना है, सामने तो केवल ओशन है, उसकी वेव्स हैं, बर्ड्स हैं। फिर उसने धीरे धीरे उन वेव्स को, बर्ड्स को सुनना चालू किया और धीरे धीरे उसका अपना खुद का कम्युनिकेशन खुद से चालू हो गया। आई एम कम्युनिकेटिंग विथ माई ओन कॉन्शियसनेस, नाउ आई एम कनेक्टेड टू माई इनर कॉन्शियसनेस। सेकंड प्रिस्क्रिप्शन खोला 12 बजे, उसमें था ट्राई टू रीच बैक। उसने कहा क्या, कहां जाना है मुझे। देन ही स्टार्टेड रिमेम्बरिंग हिज पास्ट मेमोरीज एज अ चाइल्ड, जहां उसको खुशी मिलती थी, उन मेमोरीज को उसने विजुलाइज किया, इमेजिन किया और अच्छी फीलिंग आना शुरू हो गई। 3 बजे थर्ड प्रिस्क्रिप्शन खोला, एग्जामिन योर मोटिव्स। एग्जामिन योर मोटिव यानी कहीं मैं अपना मोटिव मेरा रॉन्ग तो नहीं है। जो लाइफ में मैं पहुंचा हूं, जिस जगह पहुंचा हूं, कहीं वो गलत तो नहीं है। क्योंकि मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का डिफरेंस यही रहता है, मैनेजमेंट का अर्थ होता है लैडर पे चढ़ना और लीडरशिप का अर्थ होता है वो लैडर ठीक लगी हुई है कि नहीं, राइट डायरेक्शन पे है कि नहीं। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, आज 21st सेंचुरी में सक्सेस एट ग्रेवयार्ड, सफलता ग्रेवयार्ड में हुई, बोर्ड लगा हुआ है, इन्होंने 35 साल में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की पर हार्ट अटैक हो गया। दैट इज कॉल्ड सक्सेस एट ग्रेवयार्ड। कहीं मेरा मोटिव ठीक तो नहीं है, कहीं मेरा खुद से कनेक्शन तो टूट नहीं गया है, कहीं मेरा घर का रिलेशनशिप तो खराब नहीं हो गया है। ये सब हमारे सक्सेस में आते हैं। अगर सब ठीक है तो हमारा मोटिव ठीक है। केवल मटेरियल ग्रोथ कर ली पर तीसरी 3 ग्रोथ खत्म हो गई, दैट विल बी कॉल्ड सक्सेस एट ग्रेवयार्ड। तभी एक एक्सपर्ट ने कहा, हाफ ऑफ द लाइफ वी स्पेंड अवर वेल्थ, अवर हेल्थ टू अर्न द वेल्थ एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द लाइफ वी स्पेंड अवर वेल्थ टू अर्न द हेल्थ। आधी जिंदगी खूब भाग रहे हैं 50-55 साल तक, आ गया बाईपास सर्जरी, फिर 55 साल के बाद 2 लाख डॉक्टर को दे रहे हैं, वही पैसा फिर हेल्थ को वापस रीगेन करने के लिए करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंक खत्म हो गया। द लास्ट प्रिस्क्रिप्शन ही ओपन एट 6 o'clock, दैट वॉज राइट योर वरीज ऑन द सैंड। अपनी चिंताएं रेत के ऊपर लिख दो। उसने पत्थर उठाया, रेत के ऊपर सब वरीज को लिख दिया और चल पड़ा। फिर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ओशन की वेव आई और सब वरीज को ले गई। दैट इज वाई टर्न ऑफ द टाइड। यानी जीवन में जब तक हम खुद का एग्जामिनेशन अच्छा नहीं करते तो मैनेजमेंट भी ठीक नहीं कर सकते। अगर मॉर्निंग में लीडरशिप नहीं की तो दिन में मैनेजर अच्छा नहीं बन सकता। मॉर्निंग में अगर अच्छी प्लानिंग करता हूं तो दिन में ऑर्गेनाइज करता हूं, एक्ट करता हूं, पर मॉर्निंग मेरा प्लानिंग नहीं है तो मेरा दिन भी खराब जाएगा। इसीलिए कहा सबसे बड़ी लड़ाई आदमी को अपने अंदर जीतना पड़ती है। स्टीवन कोवी हैज रिटन ए बुक 7 Habits ऑफ ए सक्सेसफुल पर्सन। द फर्स्ट थिंग ही हैज गिवन इज इनसाइड आउट अप्रोच। इन दैट ही हैज मेंशन, पहली लड़ाई आप अपने चैम्बर में जीतो। इसीलिए ओलिवर वेंडल होम्स ने कहा, ये जरूरी नहीं है हमारे सामने क्या है, पीछे क्या है, छोटी चीजें हैं, कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस। एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट ने रिसेंटली टाइम्स ऑफ इंडिया में लीडरशिप के ऊपर जो कोटेशन आता है मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस लीडर ने कहा, अब ऐसा टाइम आ गया है 21st सेंचुरी विच इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सेंचुरी, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, अनलेस वी डोंट शट डाउन अवर सेल्फ वी कैन नॉट क्रिएट द एनर्जी विद इन अवर सेल्फ। शट डाउन का अर्थ फैक्ट्री शट डाउन नहीं करना, ऑफिस शट डाउन नहीं करना, अपना एक्टिविटी ट्रैप जो सुबह से लेकर रात तक हमारा है उसको बीच बीच में शट डाउन करना। 5 senses का जो हमारा इनपुट हमारे बॉडी में है उसको शट डाउन करना, जिससे कि मेरे मिनिमम ट्रिगर्स बॉडी में हो। जितना ज्यादा मैं ट्रिगर्स बॉडी में भेजूंगा, बॉडी में डैमेज उतना ज्यादा होगा। जितना मैं इन ट्रिगर्स को मिनिमाइज करूंगा, मेरा बॉडी में हीलिंग स्टार्ट होगा। एंड वी हैव टू थिंक समथिंग आउटसाइड फ्रॉम अवर बॉक्स। क्रिएटिविटी तभी आती है जब हम उससे हटकर सोचते हैं। अगर उसी एक्टिविटी ट्रैप में फंसे हुए हैं और सोच रहे हैं तो सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर मैं जब उस बॉक्स से हटकर सोचूंगा तभी कुछ नया सोच सकता हूं. दैट इज व्हाई लाइफ इज अ डू इट सेल्फ प्रोसेस, नॉट बीइंग डन प्रोसेस. विनर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मैट. हमें तैयारी खुद की करनी पड़ती है. कोई भी प्रॉब्लम तीन तरह के हैं. एक प्रॉब्लम डायरेक्ट कंट्रोल है, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अवर ओन बिहेवियर. सेकंड प्रॉब्लम इनडायरेक्ट कंट्रोल, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग अदर्स बिहेवियर. तीसरा नो कंट्रोल, कुछ पुरानी स्मृतियां पास्ट और कुछ रियल सिचुएशन सडन आई जिनका डायरेक्टली हमारा कंट्रोल नहीं रहता, पर इन सिचुएशंस में भी हम अपनी एम्पावरमेंट के द्वारा उसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं. ये दो तो हम ठीक कर सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड. पर थर्ड वन इज, इट इज रिलेटेड टू अनसर्टेन एंड अननोन सिचुएशन. सो दो शब्दों में मैं कहूंगा जो आज का मेजर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है. आई एम नॉट गोइंग इन द डेप्थ. जो दो वर्ड बहुत अच्छे मुझे लगे, टेंशन मीन्स व्हाट यू थिंक यू शुड बी एंड रिलैक्सेशन मीन्स व्हाट यू आर. ये मेजर लड़ाई आदमी की ये दो शब्दों से स्टार्ट होती है, हु वी आर एंड हु वी प्रिटेंड टू. इसीलिए पहला लेसन यहां ब्रह्मा कुमारीज में आपने ये वाला सीखा, हु वी आर, रियली हु वी आर. पर क्या होता है, बचपन से लेके बड़े होने तक हम अपने चारों तरफ तरह तरह के टाइटल्स लगा देते हैं, लेबल्स लगाते जाते हैं. 7 साल, 14 साल, 25 साल, 35 साल. तो धीरे धीरे 35 साल तक पहुंचते पहुंचते हम भूल जाते हैं कि हु वी आर एंड व्हाट आई एम प्रिटेंडिंग टू. इसीलिए हम लोग कभी कभी कहते हैं हमारी पर्सनालिटी नारियल जैसी हो जाती है. नारियल बाहर से हार्ड है, फाइबर फाइबर फाइबर, इसलिए नारियल कोई तोड़ने के लिए हथौड़ा या जोर से फोड़ना पड़ता है. नारियल का अर्थ है ना रियल, रियल नहीं. अब टोटल जो मेरी पर्सनैलिटी हो गई, रियल वाली अंदर छुप गई, ना रियल वाली बाहरी हो गई, और उससे मैं एक्ट कर रहा हूं, और उन दोनों में लड़ाई चल रही है, कंफ्लिक्ट चल रहा है. महाभारत लड़ाई चल रही है, श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहा, अर्जुन में लड़ाई चल रही है, तब जाके उसमें इफिशियंसी आ रही है. जब 18 चैप्टर अर्जुन समझ गया कि इस लड़ाई को मुझे कैसे जीतना है. सेकंड मेजर प्रिंसिपल इज, ऑल एक्सटर्नल इवेंट्स आर न्यूट्रल अनलेस वी गिव देम इमोशनल टच टू दैट सिचुएशन. ज्यादातर सिचुएशन लाइफ की मेजॉरिटी सिचुएशन क्या है, न्यूट्रल है. यू आर वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, लाइफ भी एक मैच की तरह चल रहा है. मैच को मैच की तरह देख रहे हैं, ये हारा ठीक है, ये जीता ठीक है, कोई हार्ट अटैक नहीं होगा. पर मैच में जहां देख लिया, इमोशनल टच दे दिया, खूब चिल्लाया, जीत गया, हार्ट अटैक हो गया. ब्राजील ने वर्ल्ड कप जीता, 6 को हार्ट अटैक हो गया. 6 ने हार्ट अटैक इंडिया में हुआ जब इंडिया लूज कर गया. क्या हुआ, मैच मैच था, पर उसमें इमोशनल टच दे दिया. तो ये सबसे अच्छा ऑर्गन हमारा हार्ट और उसको खून देने वाली धमनी कोरोनरी आर्टरी बड़ी दोस्त है उस माइंड की. ये चिल्लाता है तो ये भी चिल्लाती है, ये डिप्रेशन में जाता है तो ये भी डिप्रेशन में जाती है. इसलिए ज्यादातर हार्ट अटैक बड़े शहरों में कॉरपोरेट सेक्टर्स में सोमवार को होते हैं. क्यों होते हैं, संडे को एंजॉय करता है, मंडे को उठता है. अगर प्रीवियस मेमोरीज उसकी ठीक नहीं है, काम से मजा नहीं आ रहा, जबरदस्ती जा रहा, बन गया डॉक्टर इंजीनियर जो बनना था, पर बनना नहीं था उसको, पर अब कर रहा है. जॉब में बॉस से कुछ अच्छा नहीं है, या सबऑर्डिनेट से अच्छा नहीं है, या जॉब में डिससेटिस्फेक्शन है, या जॉब में मोनोटोनस है, वही का वही काम. तो प्रीवियस मेमोरी कहती है कहां जा रहा, वही 6 दिन फिर से काम करना है. तू इंजॉय तो करता नहीं है। तो यहाँ मैसेज आया कि ठीक नहीं है, आज सोमवार है, फिर से मुझे 6 दिन काम करना है। तो यहाँ कॉरोनरी आर्टरी कहती है, अच्छा तुझे मजा नहीं आ रहा है तो मुझे भी मजा नहीं आ रहा है, तो दब जाती है। इसलिए मंडे को ज्यादातर चेस्ट पेन, अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये मैसेज को बहुत अच्छी तरह ले लेती है। कभी कभी कहता हूँ, भगवान तूने ये कॉरोनरी आर्टरी ऐसी क्यों बनाई, स्टील की बनाता तो कितनी अच्छी थी, दबती नहीं, हार्ट अटैक ही नहीं होता, उसको क्लीन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, एंजियोप्लास्टी की, आराम से स्ट्रेस करो, टेंशन करो, कोई अफेक्ट नहीं। पर भगवान को मालूम था ये आदमी आगे जाके गड़बड़ करेगा, तो उसने यहाँ सेफ्टी वॉल नहीं दिया जैसे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में तो सीटी बजने लगती है तो दब जाता है, पर प्रेशर यहाँ नहीं दिया, सेफ्टी वॉल नहीं दिया। दिया होता तो अच्छा था, सीटी बजने लग जाए, नॉर्मल हो जाओ, ठीक हो जाओ, अभी निकलना, सीटी बज गई है। सीटी यहाँ बजती है, किसी की सीटी हार्ट में, किसी की सीटी पैनक्रियाज में, किसी की सीटी स्टमक में, अल्सर। इसलिए आजकल जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं वो मेजर कॉमन होती जा रही है, जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस इंड्यूस्ड और साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर। अब हमारे अंदर एक मैकेनिज्म काम करता रहता है, नोइंगली एंड अनोइंगली, एट सबकॉन्शियस लेवल ह्यूमन बींग्स हैव बिल्ट इन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू परसीव एनी सिचुएशन एज अ डेंजर, देन इट रिस्पॉन्ड बाय फाइट और फ्लाइट। यानी हमारे अंदर परमात्मा ने जो ब्रेन के अंदर मैकेनिज्म बनाया है, जब कभी भी किसी घटना को हम थ्रेट के रूप में लेते हैं, डेंजर के रूप में लेते हैं, तब हमारे अंदर डेंजर वाला मैकेनिज्म काम करता है। द टर्मिनोलॉजी यूज बाय फिजियोलॉजिस्ट फाइट और फ्लाइट। ये मैकेनिज्म जब पहले के लोग जंगल में रहते थे, उनके सामने केवल एक ही सिचुएशन आती थी, शेर, टाइगर, एनिमल, उनका एक ही मेजर स्ट्रेस रहता था, तो उनके पास दो ही चॉइस रहती थी, अगर मैं स्ट्रांग हूं तो शेर से लड़ूंगा, फाइट, अगर मैं स्ट्रांग नहीं हूं तो मैं भागूंगा शेर से तेजी से, फ्लाइट। पर आज 21वीं सदी में हमारे सामने न शेर है न एनिमल है, पर हमारा मैकेनिज्म ये का यही है जो पहले था एंसेस्टर का, और इसके ऊपर तीसरा मैकेनिज्म भी जुड़ गया। फाइट वाला तो मैकेनिज्म अच्छा था, यू आर फाइटिंग, यू आर फेसिंग द सिचुएशन। फ्लाइट वाला भी अच्छा था कि लोग जंगल चले जाते थे, तपस्या शुरू कर देते थे, छोड़ देते थे, या चंबल की घाटी में खुद पड़ते थे, डाकू बन जाते थे। फ्लाइट वाला अच्छा था, गुस्सा कहीं और निकालते थे। पर अब गुस्सा कहां निकालें? तो अब तीसरा मैकेनिज्म हो गया, वो हो गया न फाइट है न फ्लाइट है, फ्राइट है, फ्रीज, वहीं का वहीं फ्रीज, ठंडा। और जब कभी भी फियर आता है, ब्लड दोनों पांव में इकट्ठा हो जाता, शॉक में चला जाता। इसके कारण सडन वाजोवेगल हार्ट अटैक्स आर बिकमिंग वेरी कॉमन। आज ही मैं पढ़ रहा था पेपर में, जापान में उन्होंने एक मेथड निकाली कि जब वो कॉरपोरेट सेक्टर के लोग वापस ऑफिस से बाहर निकलते हैं, अगर वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, अपने बॉसेस से दुखी रहते हैं, तो उनका गुस्सा कहाँ निकाले। तो वो कबाड़ खाने वालों ने हथौड़े बनाए और उनको बोलते हैं, आओ हमारे यहाँ और तोड़ो जिसको तोड़ना है। वो उनको मटेरियल देते हैं, जैसे एक जंग कार है, तो उसको कार ट्रैफिक से बहुत गुस्सा आता था, ट्रैफिक जाम, यानी उसको फ्रस्ट्रेशन आता था। तो अब उसके सामने एक कार रख दी, खराब वाली पुरानी कार, और उसको तोड़ता। 2 घंटे में देखते थे कि सबके स्ट्रेसेस कम हो जाते थे, क्योंकि जितना वो निकालेगा उतना उसका अंदर का एक्सप्रेशन कम होगा। यानी लेवल कहां तक पहुंच गई है कि अब वो भी कमाने लगे हैं, वो लोग चार्ज करते हैं, इतना चार्ज करेंगे 2 घंटे के लिए, आधे घंटे में कर दिया, ठीक हो गए, चले जाओ। तो उनको वो मटेरियल सप्लाई करते हैं और हथौड़े सप्लाई करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो निकालें, कई कंपनीज में ऐसा भी है कि वो लोग अपने बॉसेस के चित्र नीचे लगा देते हैं। जब वर्कर जाए, जाने के पहले अगर उसको बहुत गुस्सा आता है इस बॉस से, तो एक कीला लगा दे। जिस बॉस के नीचे ज्यादा कीले लगे रहते हैं उसको कहा जाता है कि यू हैव टू मॉडिफाई योर अप्रोचेस। सो फाइट, फ्लाइट, फ्राइट, और ये हमारा मैकेनिज्म है। ये मिलियन डॉलर मैकेनिज्म हमारे शरीर में काम करता रहता है। इंफॉर्मेशन जाती है, प्रोसेस होती है, हायर सेंटर्स पे जाती, फिर एक और लास्ट इमोशनल सेंटर पे आती, फिर हम एक्ट करते हैं। दिस इज अवर लॉजिकल रूट, लॉजिकल एनालिसिस, वी टेक डिसीशन। गॉड हैज क्रिएटेड अनदर रूट, इमरजेंसी रूट, मैसेज गोज फ्रॉम डायरेक्टली टू इमोशनल सेंटर एंड वी एक्ट। भगवान ने दोनों रूट बनाए हैं, एक लॉन्ग रूट बनाया, एक शॉर्ट रूट बनाया, कि जैसी सिचुएशन हो वैसा आप एक्ट कर सको। इमरजेंसी रूट क्यों बनाया, कि जब कभी इमरजेंसी हो इतना टाइम वेस्ट नहीं करो लॉजिकल रूट से पूछने का, और आप एक्ट करो। जैसे नहाने गया, गर्म पानी, बाल्टी में हाथ डाला, गर्म पानी है तो क्या करूंगा, एकदम हटा लूंगा। उस समय लॉजिकल रूट से नहीं पूछूंगा कितना टेम्परेचर है, रख सकता हूं कि नहीं, व्हाट आर माय चांसेस, तब तक तो हाथ गायब हो जाएगा। प्रीवियस मेमोरी कहेगी हटा, बहुत गर्म है, हिप्पोकैम्पस कहेगा, शॉर्ट रूट कहेगा हटा, नहीं तो हाथ खत्म होगा, हटा दूंगा। पर अब मेजर प्रॉब्लम क्या हो गया है, व्यक्तियों का नेचर ड्यू टू फियर बेस्ड शॉर्टकट ज्यादा हो गया है, इंपल्सिव नेचर, और इंपल्सिव नेचर के कारण वो लॉजिकल रूट में घुसता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। सड़क पे जा रहा है, ना गाड़ी देख रहा है, ना कुछ जा रहा है, बस। अब गाड़ी चलाना इतना डेंजरस है कि आप खुद को बचाओ, सामने वाले को बचाओ, उसको चिंता नहीं, वो तो बस आ गया, क्योंकि प्री ऑक्यूपाइड व्यक्ति बहुत हो गया है। प्री ऑक्यूपाइड का अर्थ है उसको ये नहीं मालूम अभी मैं कहां हूं, इधर हूं तो उधर है, उधर है तो इधर है। जब सोचना है तो फील करता है, और जब फील करना है तो सोचता है। ऑफिस जाता है तो घर की फाइल ले जाता है, घर जाता है तो ऑफिस की फाइल ले जाता है, और इसके कारण ये इंपल्सिव रूट बहुत कॉमन होता जा रहा है। अब जैसे मैंने कहा शेर नहीं है हमारे सामने, पर अब क्या है हमारे सामने शेर, जब कभी हमें फीलिंग आ जाती है, किसी ने कुछ कह दिया, वी आर हर्ट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली, उसको हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं, और उससे कईयों को एंजाइना पेन चालू हो जाता है। दूसरा, जब कभी हम कोई चीज करते हैं जो हमारे को कंफर्टेबल नहीं है, नई चीज है, नया चेंज आया है, और मैं ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, वो भी मुझे तकलीफ देती है। ये दोनों सिचुएशन में अगर व्यक्ति इंपावर्ड नहीं है तो प्रॉब्लम आ सकता है। अब चाहिए क्या हमें, दोनों का बैलेंस, दोनों का बैलेंस चाहिए। लाइफ लॉजिकल नहीं है, लाइफ इमोशनल नहीं है, लाइफ दोनों का बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो दोनों सिस्टम हमारे ठीक काम करेंगे, अगर बैलेंस नहीं है तो एक सिस्टम प्रीडोमिनेंट रहेगा और वो हमारी साइकी को गवर्न करेगा, जिसके कारण हमारे में डिस ईज चालू हो जाएगी। इंग्लिश में कहते हैं वी आर ह्यूमन बींग, द ह्यूमन वर्ड डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड द ह्यूमस, द सॉइल, SOIL, एंड द बींग मीन्स एनर्जी, लाइफ फोर्स, SOUL। आप देखें केवल एक ही फर्क है, सो वन इज आई, अदर इज यू, एक ही वर्ड है, SOIL, SOUL। आई मीन्स आईनेस एंड माइनेस। जब व्यक्ति में आईनेस एंड माइनेस आता है तो तब उसमें फियर चालू होता है, एंड देन ही परसीव्ड एवरी सिचुएशन एज अ डेंजर, एवरी सिचुएशन एज अ थ्रेट। अगर हर सिचुएशन को मैं थ्रेट के रूप में लूंगा तो बॉडी में डिस ईज चालू हो जाएगा। डिजीज क्या है? डिस ईज। आयुर्वेदा की बहुत अच्छी कहावत है, पांव गरम पेट नरम से ठंडा तो आपकी हेल्थ अच्छी। अब क्या हो गया, 21वीं सदी में ये उल्टा हो गया, पांव हो गए ठंडे, पेट हो गया टाइट, सिर हो गया गरम। इसके कारण दिस इज यहां चालू हो गया, पांव से नहीं भाग रहे हैं, सिर से भाग रहे हैं। लिव इन ईज, ईट इन ईज, स्लीप इन ईज। इसीलिए अभी नया स्ट्रेस जो चालू हो गया, मोबाइल स्ट्रेस। चार जगह कम से कम मोबाइल को मत ले जाओ। पहला, खाना खाते समय बंद कर दो, एंजॉय योर मील्स। जितना आप उसको अच्छी तरह से खुशी से खाओगे तो खुशी वाले हार्मोन्स एंजाइम्स मिलेंगे। गुस्से से खा रहे हैं, जल्दी जल्दी खा रहे हैं, जैसे खाना भी काम हो गया, खड़े खड़े खाना काम वर्क हो गया, खाना खा लिया। वर्क, ईटिंग इज नॉट ए वर्क, ईटिंग इज गिविंग मी एनर्जी। धीरे धीरे खाऊंगा तो मेरा डाइजेशन यहां से चालू होगा, माउथ से। यहां अगर प्रीमिक्स खाना नहीं होगा तो स्टमक में प्रीमिक्स खाना नहीं जाएगा तो वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। गल्पिंग कर रहा हूं, टीवी को देख के खा रहा हूं, मोबाइल पे देख के खा रहा हूं, धन धन, तो खाना सीधा अंदर गया। दांत यहां नहीं है, दांत यहां है। तो इसलिए स्लो एंड इजी उस समय मोबाइल का यूज न कर। सेकंड, एक्सरसाइज के समय, व्हेन यू आर डूइंग योर एक्सरसाइज यू वांट टू गो विद इन, दैट इज माय क्रिएटिव टाइम, इनोवेटिव टाइम। आप एक्सरसाइज करो, पूरा फोकस करो एनर्जी को, हार्ट रेट को ले जाओ अच्छी तरह, वो मैं बताता हूं। तो एक्सरसाइज के समय। थर्ड, नहाने के समय। नहाने के समय भी अगर हम वहां रख देते हैं बाथरूम में मोबाइल, तो नहाओगे कैसे ठीक से? और नहाओगे ठीक से नहीं तो क्रिएटिविटी का दूसरा जगह है नहाना, वहां से ही इनोवेशन चालू होता है। When you are lost in your own self, गीत गाने लगते हो, कितना अच्छा लगता है। देखो जैसे ही पानी गिरता है गीत गाना चालू हो जाते हैं। क्यों गाना चालू कर देते हैं? वो अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस खुल जाता है बचपन का, जो गीत अभी नहीं पहले के गए हुए थे वो मुंह में से निकलना शुरू होते हैं, अगर प्रॉपर नहा रहे हैं। अगर गाना नहीं गा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ठीक से नहा नहीं रहे हैं, मोबाइल पे अटके हुए हैं, प्री ऑक्यूपाइड है, वहां भी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। चौथी जगह, प्रेयर और मेडिटेशन, वो मेरा समय है। ये चार चीजें भगवान ने हमें दी है अपने लिए, उस समय हम डिस ईस न करें, उस समय ईस के साथ करें। ये हमारी एक्वायर्ड पर्सनालिटी है, नारियल वाली पर्सनालिटी है, और ये हमारी जो मैं हूं, व्हाट यू आर, बचपन से लेके अभी तक मैं ये हूं, यही मुझे चाहिए। अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए? प्यार, खुशी, आनंद, शांति। मैं आपको दिखाऊंगा आगे चलकर टॉप लीडर्स हैं, पर उनको खुशी कहां से मिलती है? जब वो इस क्वाड्रेंट में आते हैं। और जब तक हम इस क्वाड्रेंट में नहीं आएंगे बार बार, तो ये वाली नारियल वाली पर्सनालिटी बनी रहेगी, तो तोड़ना ही पड़ेगा हमारा सिर बार 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 बार। इसीलिए वैष्णो देवी के मंदिर में जाते हैं देवी के दर्शन करने, तो पहली कंडीशन क्या है? आप गुफा में से जा रहे हैं तो ये ईगो को छोड़ के जाओ। गर्दन क्यों झुकानी पड़ती है कि भगवान को? ईगो नहीं चाहिए, जूता तो सेकेंडरी चीज है। ये अंदर का जूता छोड़ के जाओ, जो हम लोग कहते हैं आई एम ओके यू आर नॉट ओके। ये वाली कौन सी पर्सनैलिटी है? आई एम ओके यू आर नॉट ओके, तो तना हुआ ही रहेगा, बिल्कुल टाव, मुंह दबा हुआ, टना हुआ। अब क्या हो रहा है? हर बार तना हुआ है तो लिगामेंट, स्पॉन्डोलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर कॉमन हो जाएगा। हर बार प्रेशर कर रहे हो, हर बार रिएक्ट कर रहे हो, तो ये मसल्स और लिगामेंट बहुत सेंसिटिव है। इसलिए चाइनीज कहावत है टाओ की, जिससे मैंने जिंदगी का पहला प्रिंसिपल सीखा, वट एवर इज फ्लेक्सीबल एंड फ्लोइंग दैट विल ग्रो नेचुरली, वट एवर इज रिजिड एंड ब्लॉक दैट विल विदर एंड डाई। इसका अर्थ क्या हुआ? फ्लेक्सीबिलिटी यहां बाहरी पर्सनैलिटी में एंड फ्लोइंग नेचर इन द माइंड। इसीलिए हमारे सभी देवी देवताओं को कैसे बंद कर दो, थोड़ा सा सभी देवी देवताओं को कैसे दिखाया ऐसा, सभी देवी आप मंदिर जाओ, लक्ष्मी को भी जाओ, देखो लक्ष्मी कैसे खड़ी रहती है, पैसा गिर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फ्लो कर रहा है। इसीलिए करेंसी को कहते हैं ग्रीक लैटिन वर्ड में करंट, करेंसी मींस करंट, करंट फ्लो कर रहा है तो लाइट है। पर हम क्या करते हैं करंट को, बॉडी में भी ब्लड फ्लो कर रहा है, कंटिन्यूअस ब्लड चल रहा है, हजारों माइल 24 घंटे में ट्रेवल कर लेता है, कई गैलन्स ब्लड पंप कर देता हार्ट। पर हम क्या करने लग गए, ऑल अनहैप्पीनेस अराइज इन ट्राइंग टू कंट्रोल द पीपल, ट्राइंग टू कंट्रोल द सिचुएशन ओवर विच वी डोंट हैव एनी कंट्रोल, इन ट्राइंग टू डू दिस वी सेंड फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू अवर बॉडी एंड दिस इज स्टार्ट। यानी हर व्यक्ति क्या करता है, लक्ष्मी बेचारी कह रही है मुझे जाने दो, आई हूं यूज करो और जाने दो, पर हम क्या करते हैं पकड़ कर करोड़ 25 करोड़ बंद कर दिए, ब्लॉक कर रहे हैं उसको, करंसी को तो लक्ष्मी में भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम आएगा, चेस्ट पेन चालू होगा, तो बॉडी में भी ब्लॉक चालू हो जाएगा। इसीलिए लेट इट फ्लो, एंजॉय द फ्लो, खुशी यात्रा के साथ है, यात्रा के अंत में नहीं है। हम सभी सोचते हैं जब मैं वहां पहुंच जाऊंगा तब मैं खुश हूंगा, सब बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे का क्या होगा उसकी चिंता में घूमते रहते हैं। फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ लूजिंग, ये दो डर आदमी को खा जाते हैं और हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं। इसीलिए इंजॉय द प्रेजेंट और उस फ्यूचर को भी सोचो, अच्छा प्रेजेंट ठीक रहेगा तो फ्यूचर भी ठीक रहेगा। दैट इज वाई कीप अ बैलेंस बिटवीन यूअर थिंकिंग एंड डूइंग, दिस इज अवर डूइंग पार्ट, दिस इज अवर थिंकिंग पार्ट, दिस इज अवर श्री कृष्णा, दिस इज अवर अर्जुना। इफिशियंसी प्रोडक्टिविटी, लीडरशिप मैनेजमेंट, ये ठीक है तो ये ठीक होगा ही होगा, ये श्री कृष्ण ठीक नहीं तो ये ठीक नहीं होगा, वो तीर निशाने पे नहीं लगेगा। पांच इंद्रियां प्रोडक्टिविटी है और ये हमारी लीडरशिप है। दोनों का फोकस ठीक रहेगा तो तीर निशाने पे लड़ेगा, नहीं तो लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर पता लगता है कि मेरी लैडर तो गलत ही थी। इसीलिए दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है। दिस इज एक पर्सनालिटी जो बहुत जल्दी बीमारी को लाती है, वो है नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी। नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी मींस यू आर सप्रेसिंग एवरीथिंग इनसाइड। कईयों का नेचर रहता है बहुत सेंसिटिव नेचर रहता है, हर चीज को अंदर दबाते जाते हैं, और पर्टिकुलरली हम इंडियंस का बचपन से ही कुछ ऐसा चला है सिस्टम, क्योंकि हमारी खुद की रिलीजियस बिलीफ्स, फैमिली बिलीफ, कल्चर, सोशल बैकग्राउंड, सब चीजें काम करती है, तो हम लोगों के ज्यादा नेचर क्या होते हैं, अंदर ज्यादा रखते हैं। और जो व्यक्ति उसको प्रॉपर एक्सप्रेशन नहीं मिलता तो वो अंदर ही अंदर रखता जाता है। तो नॉन एक्सप्रेशन सप्रेशन डिप्रेस इम्यून सिस्टम, जितना दबाएंगे उतना हमारा इम्यून सिस्टम दबेगा। इसलिए क्या करना है, जब मौका मिले एक्सप्रेस योरसेल्फ इन ए हेल्दी वे without hurting the feeling of your own and without feeling hurting the feeling of other. एक स्टडी में देखा जिनकी पत्नियां अपने पति को घर के बाहर छोड़ने आती है और कुछ अच्छे शब्द उसको बोलती है और शाम को वापस उसको अच्छी तरह ग्रीट करती है, उनमें हार्ट अटैक कम पाए गए। क्यों हुआ? हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सिक्योरिटी एंड एक्सप्रेशन। 3 साल शादी के, 5 साल शादी के तो अच्छे चलते हैं, बाहर तक छोड़ने जाएगी, लेने भी आएगी, कहेगी कि भी जल्दी आना। 5 साल के बाद अरे अब तो ठीक है, रोज ही जाता है, रोज ही आता है, तो वो एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है। एंड कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कम्युनिकेशन नहीं है तो स्ट्रेस बिल्टअप होगा ही होगा, बॉटल अप हो जाता है। एक और स्टडी में देखा जो लोग कुत्ते लेकर घूमते हैं, रोज कुत्तों को घुमाते हैं, उनमें भी हार्ट अटैक कम पाए गए। क्या हुआ? कुत्तों को जब वो ये लोग घुमाने ले जाते हैं, बहुत अच्छी तरह उससे बात करते हैं, केयर करते हैं, हाउ आर यू डॉगी, एवरीथिंग ओके, आज मेरा प्रॉब्लम ये था, ये हुआ, कुत्ता भी बड़ा आजकल इंटेलिजेंट हो गया, कहता भौ यस यस, तो उसको लगता है बड़ा अच्छा कह रहा है। दूसरा, कुत्ते को बोलो तो जवाब नहीं देता, आदमी को बोलो तो काटता है। सो दे फील वेरी कंफर्टेबल विद डॉग एंड कैट, और इसलिए वो सुपर मॉडल अपने कुत्ते के लिए 25 लाख का ब्रेसलेट डायमंड का ला के दिया उसने। दे फील कंफर्टेबल, व्हाई? समवेयर दे गॉट ईगो क्लैशेस। दोनों ही अगर इंटेलेक्चुअल हैं तो क्या होगा? दोनों हेड एंड हेड हो गए। रिसेंटली एक देखा कपल, लॉयर हैं, दोनों लॉयर, एडवोकेट एडवोकेट। अब दोनों क्या? लॉजिकल लॉजिकल, मैं भी ठीक हूं, तुम भी ठीक हो, तो दोनों का कम्युनिकेशन ही नहीं। घर भी आए तो बिल्कुल लॉजिकल, अब क्या होगा? कम्युनिकेशन ही नहीं रहा। अब लेडी तो हार्ट है पर वो भी लॉजिकल हो गई। अब उसने कहा, उसको प्रॉब्लम है सीएडी का, उसने कहा 20 साल शादी के हो गए, आज तक इन्होंने कोई अच्छा शब्द मुझे नहीं बोला, रोने लगी। तो लाइफ इज नॉट लॉजिकल और लाइफ इज नॉट टाइटल, लाइफ इज ए हेड एंड हार्ट। अगर एक हेड है तो एक हार्ट होना ही पड़ेगा, दोनों तभी शॉक को एब्सॉर्ब कर सकेंगे। दोनों ही अगर हेड एंड हेड होते हैं तो नॉन एक्सप्रेसिव पर्सनैलिटी आती। नेक्स्ट पर्सनैलिटी इज स्टबर्न पर्सनैलिटी। हर चीज ठीक होना चाहिए, हर चीज परफेक्ट होना चाहिए, बच्चे बड़े अच्छे होना चाहिए, बच्चे सुपर ह्यूमन बींग होना चाहिए, बच्चों के मैनर्स बड़े अच्छे होना चाहिए, 4 साल का बच्चा है शांत बैठना चाहिए, पार्टी में आया चुपचाप बैठ जाए, कोई घर में आए तो कहना चाहिए अंकल ओम शांति, नहीं करे तो टेंशन आ जाएगा। दे एक्सपेक्ट द रिजल्ट्स फ्रॉम चिल्ड्रन। अगर हम हर समय एक्सपेक्ट करेंगे बच्चों से, तो बच्चों के अंदर भी आज साइकोटिक प्रॉब्लम कॉमन होते जा रहे हैं। उनसे आप एक्सपेक्ट मत करो रिजल्ट्स का। हमें वॉर नहीं जीतना है, बैटल नहीं जीतना है, वॉर जीतना है। नॉट ए टेम्पररी फिनोमेना, इट इज ए लॉन्ग फिनोमेना। तो उसके रिजल्ट को देखकर हम उससे एक्सपेक्ट नहीं करें और न उससे बार्गेन करें। अगर तू अच्छे नंबर लाएगा तो मैं तेरे को कार लेके दूंगा, बाइसिकल लेके दूंगा, बार्गेनिंग। अगर बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी तो बड़े होके वो भी क्या करेगा? बार्गेन करेगा। सर ये काम कर दो, नहीं नहीं हो नहीं सकता, डिफिकल्ट है, सर ये ले लो, हो जाएगा। बिकॉज करप्शन वहीं से स्टार्ट हुआ, क्राइंग एंड फीडिंग। बार्गेन नहीं करो, उसको अपना सिस्टम डेवलप करने दो, क्योंकि जब तक आप हो नहीं हो तो ही हैज टू टेक द डिसीजन। इसलिए जो मैंने रूट बताया आजकल इम्पल्सिव रूट, पिछले 1 साल में 10 केसेस ऐसे देखे बच्चों के जिसका प्राइमरी कारण क्या था? पेरेंट्स का ओवर डिफेंस सिस्टम। बच्चा तीसरे मेडिकल कॉलेज में गया है, तीसरे दिन सुसाइड कर लिया। क्या लिखा? मैं इंजीनियर बनना चाहता था पर मेरे फादर ने फोर्स किया डॉक्टर बनने के लिए। ही वॉज नॉट एंजॉयिंग। तो इंपल्सिव रूट ने काम किया, कहां बन रहा है डॉक्टर, तू तो इंजीनियर बनना चाहता था, सामने पंखा दिखा, कर दिया। इसलिए आजकल पंखा लगाना भी डेंजर हो गया है, बहुत इजी रूट हो गया है। तो हम अपनी पर्सनालिटी से दूसरों को ना देखें। जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, डू नॉट सी थिंग्स एज यू आर, सी द थिंग एज दे आर। आप अपने चश्मे से हर चीज को मत देखो, आप जैसी चीज है वैसे उसको देखो। जिसको कहते हैं, जो दूसरी पर्सनालिटी अगर उस बच्चे की ऐसी हो जाएगी, बार बार इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन, ऊट ब्रश कर ऊट ब्रश कर, 25 साल का हो गया है अभी भी इंस्ट्रक्शन मिल रही है, नहीं तो वो उठ नहीं रहा है, 9 बज गए उठ, उसको ऑर्डर नहीं मिलेगा तो सोया रहेगा, तो उस बच्चे की हालत क्या हो जाती है? आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। ऐसे आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक हो गई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, आई एम ओके यू आर नॉट ओके, दूसरी हो गई आई एम नॉट ओके यू आर ओके। डिफेंसिव, हमेशा डिफेंसिव रहेगा। ये एग्रेसिव है, ये पैसिव है। अब ये भी बीमार होता है, स्ट्रेस इसको आती है एग्रेसिव को, और पैसिव को डिप्रेशन आता है, इनसिक्योरिटी बनी रहेगी। बेटा तू ठीक है? नहीं नहीं मैं ठीक नहीं हूं, मैं कर ही नहीं सकता। नहीं नहीं ओके, फिर उसको बार बार मोटिव करना पड़ता है, हर काम के बाद उसको कहना पड़ता है, बेटा यू आर गुड यू कैन डू इट। जब तक नहीं करेंगे तो वो ऐसा फिर से फेस में चला जाएगा। थर्ड पर्सनैलिटी विच वी वॉन्ट इन अवर लाइफ इज आई एम ओके यू आर ओके एवरीथिंग ओके। मैं ठीक हूं, आप ठीक हैं, जो आप जैसे हो ठीक हो। मदर टेरेसा ने वही गरीबों को गले लगाया, जो हो अच्छे हो उनको मोटिवेट किया। वही शिव परमात्मा ने आके भी सबको गले लगाया, तुम लूले हो लंगड़े हो अल्जा हो कुब्जा हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम खुद भी दुखी रहते और दूसरों को भी दुख देते। इसलिए चार तरह के आजकल दुखी हो गए हैं, एक खुद के दुख से दुखी, दूसरा दूसरों के दुखों से दुखी, तीसरा दूसरों के सुखों से दुखी, चौथा बिना कारण दुखी। नंबर 3 और 4 बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ है फिर भी टेंशन है। तो ये स्टबर्न पर्सनालिटी। नेक्स्ट लास्ट पर्सनालिटी, टाइप ए पर्सनालिटी। टाइप ए मींस फास्ट रिजल्ट, फास्ट वन डे मैच। सिंपल में भगवान शांति दो बस जल्दी करो, दिस इज कॉल्ड टाइप ए पर्सनालिटी। हर समय उनका एड्रीनल काम ही करता रहेगा, बिना सोए हुए भी एड्रीनल काम कर रहेगा। सोते समय तो इसको आराम दे दो, पर सोते समय भी वो काम करे। इसीलिए अभी जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हमने अपनी स्टडी में से निकाले जो बीमारी को जल्दी लाते, पहला लॉस ऑफ मीनिंग। लॉस ऑफ मीनिंग यानी एम्प्टीनेस, खालीपन, रिटायर्ड हो गए, कुछ काम नहीं, कुछ अर्थ नहीं, जी रहे हैं खा रहे हैं चल रहे हैं बस, कोई मीनिंग नहीं है। देखा गया जिन व्यक्तियों का मीनिंग नहीं होता उनमें भी बीमारी जल्दी आती। जो लोग कहते हैं ना मैं रिटायर्ड हो गया, मैं रिटायर्ड हो गया, बच्चे सेटल हो गए, अब भगवान क्या सोचने लगता, अरे ये बार बार कहता रिटायर्ड हो गया रिटायर्ड हो गया, इसको कुछ काम दो, तो वो फिर बीमारी को भेज देता है कि जा इसको कुछ काम करो, फिर वो उसमें काम में लग। इसलिए कभी नहीं कहो कि मैं रिटायर्ड हुआ, रिटायर्ड जॉब से हुआ, लाइफ से नहीं हुआ। कीप योर मिशन अलाइव, वॉन्ट टू स्टे अलाइव। जो व्यक्ति अपना हर साल हर महीने हर दिन एक मिशन लाते हैं उनकी हेल्थ अच्छी रहती है, पर जो हर व्यक्ति मिशन नहीं लाता है वो कहीं ना कहीं जरूर बीमार होगा। सो क्रिएट योर पर्पस। एंगर, क्रिटिसिज्म, हर चीज को क्रिटिसाइज करना, जो चौथी पर्सनैलिटी है,
आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके, नथिंग इज ओके, ये ठीक नहीं है, मैं ठीक नहीं हूं, क्रिटिसाइज ही करेगा, इंडिया बेकार है, गवर्नमेंट बेकार है, पॉलिटिकल सिस्टम खराब है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, सड़क पे ये लोगों को अकल नहीं है कैसे ट्रैफिक चलाते हैं। अब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब वही एंजॉय कर रहे हैं, दुखी कौन हो रहा है? मैं ही हो रहा हूं। तो क्रिटिसाइज करने वाला भी आर्थराइटिस जल्दी होती है उसको, इसलिए किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं करें, खुद का क्रिटिकल एनालिसिस जरूर करें। होल्डिंग नेचर, पकड़ने का नेचर, वो भी बीमारी को जल्दी देता है। इनका बहुत बड़े एक्सप्लेनेशन है। तो आज सबसे बड़ी बीमारी सीएडी, और देखा जा रहा है कि इंडिया में नंबर वन किलर हो गई है, आने वाले समय में भी 60% हमारे देश में हो जाएंगे। यानी अगर हमने अपने को चेंज नहीं किया तो हृदय रोग की बीमारी 100 मरीज पूरे वर्ल्ड में से 60 इंडिया में से होंगे। इंडियंस में ये बीमारी होने के चांसेस ऐसे ही ज्यादा हैं, और अगर हमने ठीक नहीं किया तो चांसेस इंडिया विल बी द कैपिटल इन सीएडी एंड डायबिटीज। दूसरा मेजर प्रॉब्लम जो वर्ल्ड फेस कर रहा है और करेगा, डिप्रेशन और निराशा, ये दो मेजर किलर हो जाएंगे अगर हमने अपने लाइफस्टाइल को ठीक नहीं किया। इसलिए आजकल कहते हैं जीन्स आर लोडेड गन्स, लाइफस्टाइल इज द ट्रिगर। जो लेटेस्ट स्केल आया है स्ट्रेस का, वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने जीन्स को केवल 10 नंबर दिए हैं। इफ यू गॉट ए बैड जेनेटिक्स -10, इफ यू गॉट ए गुड जेनेटिक्स यू गॉट +10, पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसमें दिया है 100 नंबर, यू आर स्टेबल पर्सनल एंड फैमिली लाइफ 100 मार्क्स। अब आप देखो कि खेल कहां से चेंज हो गया, उन्होंने पूरा इंपॉर्टेंस दिया है गुड जेनेटिक्स +10, बट स्टेबल होम एंड पर्सनल लाइफ 100। चाहे मेरे जीन्स खराब हो अच्छे हो कोई बात नहीं, पर मेरे 100 मार्क्स अच्छे होना चाहिए, क्योंकि ये ठीक है तो मेरे जेनेटिक्स के ऊपर भी मैं ठीक कर सकता हूं। सेंस ऑफ ह्यूमर, कितना आप लाइफ को इजी लेते हैं, हंस सकते हैं। इजी जो हंस लेता है, सिचुएशन से घबराता नहीं है, प्रॉब्लम्स को फेस करता है, उसका इम्यून पावर अच्छा काम करता है। इसलिए कभी भगवान को नहीं कहना भगवान मुझे प्रॉब्लम नहीं दो, मुझे प्रॉब्लम नहीं दो, भगवान और देगा। उसको कहो हाँ मुझे शक्ति दो जिससे कि मैं प्रॉब्लम को अच्छी तरह फेस करूं, तो भगवान कहेगा यस, जिससे कि मजा भी आए। मैच खेलने में ही मजा आता है, मैच खेले ही नहीं बिल्कुल वैसे का वैसा रहेंगे तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। इसलिए एक व्यक्ति ने डॉक्टर हैंसले से पूछा, जिसने स्ट्रेस को निकाला था, ठीक है, स्ट्रेस को निकाला था, उसने पूछा सर मुझे ऐसी मेथड बता दो कि जीवन में प्रॉब्लम नहीं आए। उसने कहा अच्छा अगले दिन आना। अगले दिन उस व्यक्ति को ले गया शमशान में, कहता यहाँ आकर सो जा, वहां प्रॉब्लम नहीं है, वहां लड़ना है तो प्रॉब्लम आएगा। तो सेंस ऑफ ह्यूमर, राइट डाइट, एक्टिविटी, रियलिस्टिक गोल, ये मैं थोड़ा टच करूंगा आगे चलकर, ये लेटेस्ट स्केल है। हेल्थ हमारी कई फैक्टर से गवर्न है। नेक्स्ट, एक्सरसाइज, डाइट, नींद, काम, हमारा पर्सनालिटी। नेक्स्ट, ये आयुर्वेदा का कंसेप्ट है, आहार, आचार, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन, ये 4 पिलर हैं हेल्थ के हमारे। नेक्स्ट, इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी का अर्थ है हील डाय। हील डाय का अर्थ है आप अपने को हील करिए। हिंदी में कहते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का अर्थ है स्व मीन्स मैं खुद, आस्था मीन्स मेरा कॉन्शियसनेस, मेरा बिलीफ सिस्टम। अगर वो ठीक है, मैं अपनी सीट पर सेट हूं तो मेरी हेल्थ अच्छी है। सीट पर अपसेट हूं, सेट नहीं हूं तो प्रॉब्लम होगा। जो अपसेट जो मैंने बताया, हु वी आर एंड हु वी प्रटेंड टू। तो जब मैं अपसेट होता हूं तो तब सीट पर प्रॉब्लम चालू होता है। एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, इल का अर्थ क्या है, ILL, आई लैक लव, प्यार नहीं, सूख गए, मशीन हो गए, मैकेनिक हो गए, तो बीमारी आएगी। लव इज ए एनर्जी। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते हैं तो एनर्जी का फ्लो कैसे होगा? तो लव अपने आप से करिए। इसलिए अभी लेटेस्ट डेफिनेशन जो आई है, क्वांटम हीलिंग। क्वांटम हीलिंग मीन्स दैट क्वांटा लेवल एनर्जी एंड मैटर आर इंटरचेंजेबल। इफ एनर्जी इज गुड, मैटर फॉर्मेशन विल बी गुड। दैट इज वाई ऑल हीलिंग प्रोसेस एक्सेप्ट एलोपैथिक सिस्टम, दे वर्क ऑन फ्लो ऑफ एनर्जी। रेकी, एक्यूपंचर, मैग्नेटोथेरेपी, दे ऑल वर्क ऑन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, दे ऑल वर्क ऑन हीलिंग फ्लो ऑफ एनर्जी। दैट इज वाई डॉक्टर हैनेमन सेड, डू नॉट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पर्सन। बीमारी को ठीक नहीं करिए, उस व्यक्ति के अंदर के कंफ्लिक्ट को ठीक करिए। हार्ट डिजीज कॉमन है। नेक्स्ट, इसके कई फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट, जब कभी भी स्ट्रेस आता है तो खून की धमनी चौड़ी हो जाती और इनफ ऑक्सीजन मिल जाता है। नेक्स्ट, जब कभी इसमें डिपोजिशन चालू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल चिपकना चालू होता है, डायलिटेशन नहीं हो पाता, तो चेस्ट पेन, एंजाइना, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेजर रीजन ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा होना, सिगरेट लेना, फिजिकल इनएक्टिविटी, वजन का बढ़ना और तनाव। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, इट इज ए नॉर्मल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी। 2/3 लीवर बनाता है, 1/3 हमारा खाने में कोलेस्ट्रॉल जाता है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्योंकि कई हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, पर जब इसकी लेवल बढ़ जाती है और खून की धमनी में डैमेज हो जाता है, तब ये कोलेस्ट्रॉल चिपकना चालू होता है। हमारे में दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा वाला LDL, एक खराब वाला LDL और एक अच्छा वाला HDL। HDL की लेवल अच्छा होना चाहिए, 45, 50, 55, 60, और LDL को हमें 100 और 120 के अंदर रखना चाहिए। और ये जरूरी है कि 30 साल के बाद, 25 साल के बाद आप अपना चेकअप कराइए, और जिनके फैमिली में हिस्ट्री है, जेनेटिक्स हैं, तो डेफिनेटली उनको चेकअप पहले से ही कराना चाहिए। बाकी अगर कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है तो 30 और 35 के बाद जरूर कराना चाहिए। अपना बिल्डअप हमें पता लगेगा, जितना हम इसको कम करेंगे उतना हमारे चांसेस कम होते हैं। 1% मैंने कम किया तो 2% हार्ट डिजीज के कम हो जाते हैं, 40% कम किया तो 80% बीमारी के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करें, LDL, LDL एंड टोटल ट्राइग्लिसराइड आल्सो। नाउ वी आर टेलिंग ऑल द लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड, LDL एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल। HDL इज अ गुड, वी शुड इंक्रीज अवर HDL। इवन ट्राइग्लिसराइड भी ज्यादा डैमेज करता है। तो ये तीनों फैक्टर, 1, 2 एंड टोटल कोलेस्ट्रॉल, ये तीनों को अंडर कंट्रोल में रखें, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर डिपॉजिट होता है तो चेस्ट पेन चालू होता है, 70% 75% जब तक डिपॉजिट नहीं होता तो छाती में दर्द नहीं होता है, इसलिए किसी को पता नहीं रहता है कि बिल्डअप चालू हो गया। अभी तो ये कहा जा रहा है कि बचपन से ही चालू हो जाता है, हम लोग बच्चों को सब खिलाते हैं खाए खाए, पर 8 साल 10 साल 6 साल से ही चालू हो जाता है। इसलिए अभी आने वाले समय में जरूरी हो जाएगा कि बच्चों को भी बचपन से ही हेल्दी लाइफ स्टाइल सिखाई जाए, तब हम इसको प्रिवेंट कर सकेंगे। नहीं तो आने वाले समय में 14 साल वाला बच्चा भी चेस्ट पेन लेके आ रहा है तो देखना पड़ेगा कहीं हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं। हमने लेटेस्ट देखा है 22 साल 24 साल का ऑलरेडी देख लिया है हार्ट अटैक। अब उससे भी कम एज होती जा रही है क्योंकि हमारा बिल्डअप और प्रेशर सिस्टम जो एजुकेशन का है वो अगर कॉम्पिटिटिव बना रहता है तो उनमें भी ये फैक्टर्स को हमें बचपन से ही ठीक करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी। एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी, ये कराने के बाद भी हमें अपनी हेल्थ को ठीक रखना पड़ता है। नहीं तो कई लोग सोचते हैं मैंने बाईपास करा लिया, एंजियोप्लास्टी करा लिया, फिर से खाऊं पीऊं मजे करूं, फिर से ब्लॉक हो सकता है। इसलिए डबल बाईपास, ट्रिपल एंजियोप्लास्टी कराना पड़ती है। और हम सभी इंडियंस में जब ये बीमारी आती है, एक वेसल की नहीं होती, ट्रिपल वेसल होती है, बाहर वाले देशों में तो सिंगल वेसल है, हमारे देश में ट्रिपल वेसल होती है, डिफ्यूज डिजीज। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ठीक रखें। जेनेटिक्स हमारे कुछ ऐसे हैं, मुझे साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन केवल एक ही दिखता है कि हमारे जेनेटिक्स के कारण हम फैट को जल्दी पकड़ते हैं, हमारा जीन्स एलडीएल ऑक्सीडाइज को जल्दी पकड़ लेता है और वो डैमेज करता है। अब क्यों जल्दी पकड़ता है, दूसरों का क्यों नहीं जल्दी पकड़ता, केवल एक ही साइकोलॉजिकल रीजन समझ में आता है, हमें पकड़ने का नेचर बहुत अच्छा है, बहुत पकड़ते हैं। तो जीन्स कहता मैं भी पकड़ लूं ना, तू पकड़ रहा है इतना करेंसी को तो मैं भी पकड़ूं, काम में आएगा कभी, तो वो उस काम में आने के कारण पकड़ लेता। जो प्रोजेक्ट हम लोग नीचे कर रहे हैं, 5 साल की स्टडी में हमारे पास 800 से ज्यादा मरीज आए, ये एक रिसर्च स्टडी है जो कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसको इनिशियली ऑनरेबल डॉक्टर अब्दुल कलाम ने स्टार्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। जिन लोगों को ब्लॉक हो जाता है उनके हस्बैंड वाइफ दोनों को बुलाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, जिन्होंने अच्छी तरह स्टडी को फॉलो किया 5 साल में देखा उन्होंने एंजियोप्लास्टी और बाईपास की जरूरत नहीं पड़ी, जिन्होंने ठीक से फॉलो नहीं किया बहुत कम परसेंटेज था उनको बाईपास या एंजियोप्लास्टी कराना पड़ी। टोटल अबाउट हार्ट कोलेस्ट्रॉल इमोशनल स्ट्रेस रिलेशनशिप, उनको टोटल डाइट एक्सरसाइज 6 दिन यहाँ नीचे हम उनको रखते हैं, टोटल उनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर फॉलोअप के लिए 3 महीने और 6 महीने में बुलाते जाते हैं, और ये देखा कि धीरे धीरे उनका अमाउंट ऑफ मेडिसिन काफी कम हो गया, जो चल नहीं सकते थे केवल 50 मीटर तक चलते थे, बाथरूम में गए तो एंजीसिड लिया, खाना खाया तो एंजीसिड लिया, उनके काफी अच्छे स्कोर्स हमने देखे। और अभी इसी 2 महीने पहले स्टडी को रिप्रेजेंट किया डॉक्टर अत्रे एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ही वाज हियर एंड डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, उन्होंने ही कहा कि हम अब इसको नेशनल प्रोग्राम के रूप में ले जाना चाहते हैं, जिससे कि बचपन से ही सब बच्चों को भी अच्छा एजुकेशन मिल जाए तो फर्दर इस डिजीज से होने वाले डैमेज को कम कर सकते हैं। एक्सरसाइज जरूरी है, पहली चीज हार्डवेयर के लिए फिजिकल वॉकिंग ब्रिस्क वॉकिंग इज मोर देन इनफ फॉर वी इंडियंस। हाँ मैं बताता हूँ, आ रहा हूं, ये एक्सरसाइज के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट बॉडी वेट को कम ठीक रखिए, एक फिगर कहते हैं हम बॉडी मास इंडिकेटर BMI, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, बॉडी वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स स्क्वायर ऑफ दैट, यानी अगर मेरा 62 वेट है तो 62 डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर्स 1.67 इंटू 1.67 स्क्वायर ऑफ दैट, द फिगर शुड बी बिटवीन 21 to 25, इट इज ए नॉर्मल। अगर ज्यादा बढ़ रहा है मेरा फिगर, पर्टिकुलरली 30 से ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली आई शुड गिव फुल अटेंशन टू चेक माई बॉडी मास इंडेक्स। दूसरा एक फैक्टर है वेस्ट हिप रेशियो, वेस्ट का मेजरमेंट लीजिए और हिप के वहां मेजरमेंट लीजिए, दोनों के मेजरमेंट में फीमेल में इट शुड बी लेस देन 0.8 एंड मेल में 0.9 से कम होना चाहिए। अगर ये रेशियो बढ़ रहा है, पर्टिकुलरली 40 इंच से ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब है मुझे अपने वेट को ठीक करना है, और पर्टिकुलरली पेट वाला वजन ज्यादा नुकसान करता है, यहां वजन हो यहां हो तो चल जाता है, पर ये वाला जो सेंट्रल ओबेसिटी होती है ये ही हार्ट स्टोन डायबिटीज आर्थराइटिस का मेजर कारण रहता है, क्योंकि पूरा लोड कोरोनरी पे आता है। तो एक्सरसाइज आप चुनिए जो अच्छी लगती है, जो आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप बर्न करिए, कैलोरीज जो खा रहे हैं उनको बर्न करिए। अब सिंपल बताऊंगा, ये है एक्सरसाइज का रूल। पहला है पार्ट एक्सरसाइज का वार्म अप। जब आप पैदल शुरू करें कम से कम 1-2 किलोमीटर 10 मिनट आराम से स्लो स्पीड पे चलिए। समझो एक मिनट में 70 से 80 कदम तक आप चल रहे हैं। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज इज ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक में आप अपनी हार्ट बीट को टारगेट हार्ट रेट पर ले जाएं। टारगेट हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करना है? 220 माइनस योर एज मल्टीप्लाई बाय 0.6 2.8, 60% एंड 80% ऑफ दैट मैक्सिमम हार्ट रेट। जो फिगर आएगा दैट विल बी माय टारगेट हार्ट रेट। तो अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते जाऊंगा जिससे कि मेरी हार्ट बीट 110 और 130 के बीच में आ जाए, अगर मेरी THR ये है, और उसको मेंटेन करिए कम से कम 25 से 30 मिनट तक उसी स्पीड से चलिए। उससे क्या होगा, जो कोरोनरी आर्टरी है वो डायलेट होगी, खून का सप्लाई अच्छा होगा, और एथेरोस्क्लेरोसिस भी अगर है तो वो भी रिग्रेस होगा, बिकॉज आई एम यूजिंग माय बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बर्न होगा। तो उसको मेंटेन करिए कम से कम 25 से 30 मिनट। कम से कम 300 कैलोरी हम अपनी एक्सरसाइज से जरूर बर्न करें। सुबह के समय जब वॉकिंग करें, हल्की सी सनलाइट में शुरू करें। जब जैसे ही सन आए उस समय शुरू करें, उस समय ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है। जहां तक हो सके एक्सरसाइज बाहर करें, पैदल बाहर। अंदर वाली जिम वाली एक्सरसाइज, मशीन वाली एक्सरसाइज में थोड़ा प्रॉब्लम अभी रिसर्च स्टडीज में आ रहा है। वो भी यही एडवाइस कर रहे हैं कि ओपन वेंटिलेटेड, और जहां सूरज आ रहा है तो 15 मिनट सन बाद भी हो जाता है, और 15 मिनट सूरज में जब मैं वॉक करता हूं तो D3 विटामिन मेरा अंदर का फॉर्मेशन होता है, जिससे मेरी हड्डियां मजबूत होती, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तो सुबह मैंने उसको 25 से 30 मिनट वॉक किया, और लास्ट पोर्शन है कूल डाउन, वार्म अप, CV, कूल डाउन। फिर लास्ट 5 मिनट्स 10 मिनट्स, फिर धीरे 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 करते करते आप एक जगह बैठ जाएं। एकदम बंद नहीं करें, फिर से स्लो डाउन करें और बैठें। अब इससे क्या होगा, एक्सरसाइज से मैंने अपनी हार्ट रेट 110-120 पर ले गया रोज। अब जब कभी भी तनाव आएगा, स्ट्रेस आएगा, ट्रेन पकड़ना है, कुत्ता पीछे पड़ा है, भाग रहा हूं, हार्ट 110 तक गया, चेस्ट पेन नहीं होगा, सांस नहीं फूलेगा, एंजाइना नहीं होगा, क्योंकि मैंने हार्ट को सिखा दिया 110 और 130 तक ले गया, उसको रोज सिखा दिया है, तो उस समय मेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर मैंने इसको कभी सिखाया ही नहीं और सडनली भागा तो चेस्ट पेन और ये आएगा। मेजॉरिटी हार्ट अटैक्स आर ड्यू टू सिंगल सेकंड मिस्टेक, कुछ जल्दी कर दी, कुछ वजन उठा लिया, ब्रिज पे चढ़ गया सामान लेकर, या जल्दी खाना खाकर लेट आया, सो गया, सुबह कुछ जल्दी कर लिया, अर्ली फ्लाइट है, जल्दी पकड़ना है, टाइम कॉन्शियस है, तो इन सब से ही वो एकदम लोड आता है। पर पहले से ही ट्रेन कर दिया तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसलिए एक्सरसाइज वॉकिंग इज एज मस्ट एज ईटिंग फूड एंड डूइंग मेडिटेशन। तीन चीजें मैं अभी कहता हूं कंपल्सरी हो गई, एक्सरसाइज, खाना और मेडिटेशन। मेडिटेशन क्यों जरूरी है वो अभी आगे देखेंगे अपन। तो ये एक्सरसाइज पार्ट हो गया। नेक्स्ट अब है खाना, फूड। हमारा खाना भी कैलकुलेटेड कैलोरीज और राइट चॉइस वाला होना चाहिए, एनर्जेटिक फूड। अब समोसा है, कचौरी है, पूरी है, पैटीज है, जितनी अच्छी चीजें हैं वो केवल वजन को बढ़ाती, उनमें सैचुरेटेड फैट रहता है। दूसरा, ये चीजें जो बेकरी प्रोडक्ट्स और ये स्वीट्स हैं, उसमें तेल बर्न होता है। जितना तेल बर्न होता है उसमें ट्रांस फैटी एसिड्स बनते हैं, और वो ही हार्ट को डैमेज करते हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल उसी से बढ़ता है। तो जो चीज जीभ को अच्छी लगे इसका मतलब है कहीं गड़बड़ है, जो चीज इसको अच्छी लगे वो खाइए, यानी राइट चॉइस खाइए। तो सुबह के नाश्ते के समय हम लोग जो डाइट प्रिस्क्राइब की है इन लोगों के लिए, स्प्राउटेड, स्प्राउटेड रोज खाइए, फाइबर, हाई फाइबर डाइट, यानी मूंग मेथी चना पानी में भिगोइए, सुबह उसको लीजिए, नींबू डालिए, ककड़ी टमाटर डालिए, वो डिश आजकल मैं कहूंगा 5 स्टार मिलियन डॉलर डिश। इस डिश में आपको सब मिल जाएगा जो बॉडी को चाहिए। अगर कच्चा नहीं, अगर कच्चा खा सकते हैं स्प्राउटेड तो बहुत अच्छा है, रॉ में ताकत रहती है, एनर्जी रहती है। अगर गैस का प्रॉब्लम होता है शुरू में तो 1 सीटी दे सकते हैं, बस 1 सीटी से ज्यादा नहीं, और उसके ऊपर लाइम के 5-6 ड्रॉप डालिए, टमाटर ककड़ी डालिए, तो उसमें सब एंटीऑक्सीडेंट्स आ गए, हाई प्रोटीन आ गया, गुड प्रोटीन आ गया, और ऐसे केमिकल आ गए जो क्लॉट फॉर्मेशन को कम करते हैं, इंसुलिन को सेंसिटाइज करते हैं, डिस्प्रिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो जो बार बार कंस्ट्रिक्शन होता था वो कम हो जाएगा। स्प्राउटेड इज मस्ट, कम से कम 40 ग्राम रेशा फाइबर होना चाहिए। रेशा क्या करता है, झाड़ू का काम करता है, इंटेस्टाइन को साफ करता है, क्लीन करता है, जो रात भर टॉक्सिन इकट्ठे हो गए थे, पहली चीज हमने अंकुरित लिया और वो उसको साफ करता हुआ जाएगा। फिर हम इनको दलिया देते हैं, ये 2 चीजें कंपलसरी देते हैं, फिर तीसरी चीज अकॉर्डिंग टू कल्चर के हिसाब से देते हैं, साउथ है तो इडली दिया दो, या कुछ उपमा दी या पोहे दिए अकॉर्डिंग टू कैलोरीज, और एक बीन्स जरूर देते हैं, ग्वार फली, फ्रेंच बीन्स, जो अगेन रेशा का काम करता है, फाइबर का काम करता है। सुबह इनको वॉक के समय 4 भिगोए हुए बादाम और 1 अखरोट देते हैं, उसमें पूफा और मूफा होता है, पोली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एंड मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। अब पूफा के भी 2 टाइप होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड, और अभी लेटेस्ट रिसर्च आया है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड इज कम हम इंडियन, तो इसलिए आजकल वो लोग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वी शुड टेक। तो थोड़ा ओमेगा 3 फैटी एसिड बादाम में आ गया, अखरोट में आ गया, मूंगफली में आ जाता है, और बहुत अच्छा चीप सोर्स है अलसी, फ्लैक्सीड, फ्लैक्सीड ऑयल अभी आने लगा है, और कई लोग अब इसको रोज दही के साथ पानी निकालकर या पनीर के साथ लेते हैं, इसका भी अपना एक प्रोसीजर है। ऐसे ये फिश में ज्यादा रहता है, क्योंकि हम इंडियंस में फिश फ्लैक्सीड, FLAX, फ्लैक्सीड यानी अलसी उसको हिंदी में कहते हैं, और उसका पाउडर भी डाल सकते हैं, पर कंडीशन ये है रोज फ्रेश बनाइए, और ऑयल को लाइट में नहीं रखिए, लाइट में रखेंगे तो वो खत्म हो जाता है, उसको अंदर डार्क, स्लाइट डार्क में रूम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है या फ्रिज के साइड पे रखना पड़ता है। पाउडर को भी रोज ग्राइंड करके फ्रेश बनाइए जिससे कि वो खत्म हो जाए, उसके डिटेल मैं फिर बाद में दे दूंगा। तो ये है, फ्रूट्स को खाने के साथ ना खाइए, जो मेजर प्रिंसिपल है, फ्रूट्स को हम मिक्स नहीं करें, खाना खा लिया, अब दूध वाली चीज है उसमें एप्पल डाल दिया, एप्पल में एसिड है, दूध में वो फ्रूट सलाद बनाया तो वो एसिड दूध को खत्म करेगी, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होगा और वो ट्रांस फैटी एसिड बनाएगा। दूध वाली चीज नेचुरल, दूध दूध ही ले, दूध में मिक्स ना करें। केवल एक फ्रूट का कॉम्बिनेशन दूध में ठीक रहता है, मैंगो, बाकी कोई भी फ्रूट का मिक्सिंग उसमें जहां तक हो अवॉइड करें, और दूध को और फ्रूट्स को गैप दें, खाने के 2 घंटे पहले या खाने के 2 घंटे बाद। तो हम लोग भी उनको फ्रूट देते हैं 11 बजे, सुबह दिया बादाम नाश्ता, 11 बजे उनको फ्रूट्स देते हैं, जो फ्रूट सस्ता हो, चीप हो, सीजनल हो, वो जरूर लें, और विटामिन सी वाला फ्रूट जरूर लें। विटामिन सी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जिन बच्चों में बार बार गला खराब, टॉन्सिल, खांसी होती, एलर्जी होती, इसका मतलब है उसका विटामिन सी या लीवर कम काम कर रहा है, तो विटामिन सी वाली चीज लें। फल को तभी काटें जब खाना हो, फल को काट के न रख दें, उसका भी फिर सी लेवल खत्म हो जाता है, और एज सच खाएं। फ्रूट जूस से अच्छा है फ्रूट जूस, में फाइबर नहीं मिलता, फल में फाइबर मिलता है, तो फल को एज सच खाएं। अमरूद, एप्पल का छिलका ना उतारें, अच्छी तरह वॉश करें और छिलके के साथ खाएं। छिलके में मिनरल्स हैं, फाइबर है, केले का तो छिलका उतारोगे ही, जिसका छिलका जिसमें फाइबर है, अब केले के उससे भी एनर्जी बनाते हैं। अभी एक ने प्लांट डाला है, रॉटन बनाना से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, उनमें भी एनर्जी है। जब तक वो क्लियर पता लगे कि छिलका खा सकते हैं कि नहीं, फिर मैं जरूर बता दूंगा। बाकी अभी तक जो प्रेजेंट स्टडीज है कि अमरूद और एप्पल, इसको छिलके के साथ नहीं, जहां तक को अवॉइड करें। जिसका वजन बहुत कम है उसके लिए ठीक है, पर वो मिक्स ना करें, केला खा ले और थोड़ा टाइम बाद फिर वो दूध पी ले, दोनों का कॉम्बिनेशन आ जाएगा। जहां तक मेन प्रॉब्लम हम लोगों के खाने का जो स्टडी में आया, मिक्सिंग बहुत करते हैं, काफी चीजें मिक्स कर लेते हैं। अब जैसे शादी में गया, शादी में 1000 रुपए की गिफ्ट देना है, चाट लगा हुआ है, खाना है, आइसक्रीम है, कॉफी है, दही है, दूध है, सब है, अरे 1000 रुपए दे रहा हूं खा लो। अब ये भी चाट भी खा ली, चटनी भी गई, फुदीना भी गया, इमली भी गई, खाना भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, कॉफी भी पी ली, अब 1000 कैलोरी लेके घर आ गया, सो गया, हार्ट अटैक हो गया। अब उससे अच्छा है 1000 रुपए जाने दो, नहीं तो बाद में 3 लाख बाईपास के देने पड़ेंगे, उसको जाने दो। तो खाना भी चूस करके खाएं, रात का खाना हल्का खाएं। सबसे अटेंशन देना है हमें रात का खाना शुड बी लाइटेस्ट, क्योंकि 8 के बाद 7:30 के बाद डाउन होता जाता है। सिकेडियन रिदम से हमारा चलता है बॉडी, वो हमारे कहने से नहीं चलता है, वो खुद ही एसिड प्रोड्यूस करता है, खुद ही एंजाइम्स निकालता है, और अगर हमारी रिदम ठीक नहीं रहती और रात का मेरा मेजर मील रहता है तो भी वेट बढ़ेगा। मैं 2 खाना नहीं खा रहा हूं, 1 ही खाना खा रहा हूं, फिर भी वजन बढ़ेगा, क्योंकि एक मेजर खाना भी अगर राइट टाइम पे नहीं खा रहा हूं तो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसलिए आजकल कहते हैं स्पेसिंग करो, स्पेस इट आउट, जितना स्पेसिंग करेंगे, छोटी छोटी कैलोरीज में लेंगे, उतना बॉडी, डायबिटीज पर्टिकुलरली, उसको हम 5-6 खाने में डिवाइड करते हैं कि हर 4 घंटे में थोड़ा सा खाओ, 200-300 कैलोरी उसके एक्टिविटी के हिसाब से। तो डाइट में चेंज करें, मैं उसका एक चार्ट दे दूंगा आपको, बहन जी को दे दूंगा, चंदा बहन को बाद में, वो जो हम लोग फॉलो करते, नहीं तो ये 3 घंटे का लेक्चर केवल ये वाला चार्ट है, मैं इसको फोटोकॉपी दे दूंगा इसकी, जीरोक्स। नेक्स्ट चलते जाइए, खत्म करो। नेक्स्ट ये फैट के ऊपर है, मैं खाली थोड़े पॉइंट बता दूंगा, कोलेस्ट्रॉल कैसे कम करना। ये हमारे डाइट में जैसे पहले ही बता दिया कि ड्राई बीन्स जितने भी होते हैं उनको अगर बॉईल करके हम खाते हैं वो भी अच्छे रहते हैं, चाहे राजमा है, सोयाबीन है, ओट है, ओट्स हैं, ओट्स भी बहुत अच्छे एनर्जी देते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, जिसको शायद जौ हिंदी में, मुझे वो इंग्लिश नाम ही याद है, ओट्स सीरियल आते हैं काफी अच्छे, जौ बोलते हैं, अच्छा। विटामिन सी जरूर लें, बादाम का बता दिया, ग्रेप सीड्स का आता है, और ईसब गोल हम लोग उनको देते हैं। जिनके कोलेस्ट्रॉल ज्यादा रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, तो 2 टाइम उनको हम ईसब गोल देते हैं, लंच के समय और रात को। अब ईसब गोल लेने का भी तरीका खाने के पहले है, जो हम पानी में मिक्स करते हैं उससे वो और कॉन्स्टिपेशन होगा। खाने के पहले लें 2 चम्मच 20 ग्राम्स मिनिमम और 30 ग्राम्स, फिर 1.5 गिलास पानी पी लें। अब वो क्या काम करेगा, ये सब गोल पानी से काम करता है, स्वेल अप होता है, तो वो क्या करेगा, इंजन का काम करेगा, खाना उसको अपने साथ लेते हुए जाएगा। पीछे खाएंगे तो हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ते। सुबह उठकर फिर से दो ग्लास पानी पी लें, क्योंकि उसका पूरा फंक्शन है पानी के ऊपर। पानी ठीक से नहीं लिया और इसबगोल ले लिया तो वो इसबगोल गैस और कॉन्स्टिपेशन करेगा। पानी की क्वांटिटी हमारी अच्छी होना चाहिए अगर इसबगोल ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, तो उसके साथ वाटर का रिक्वायरमेंट जरूर लें, क्योंकि ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। पानी मैक्सिमम 2.5 to 3 लीटर्स, कम से कम 12 से 16 ग्लास अकॉर्डिंग टू वेदर लीजिए। और अपनी बॉडी, ये वो जो थ्योरी थी कि 10 ग्लास पानी पी लेना चाहिए, अभी वो थ्योरी पे लोग काफी आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। नहीं, नॉर्मल, जहां तक हो सके आपके यहाँ वेदर बॉम्बे में नॉर्मल है तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लीजिए। जो हिमालय पे रहता है या हिमाचल प्रदेश में रहता है उसको वार्म वाटर की, जितना हमारा रूम टेम्परेचर से गाड़ी चलती बॉडी की उसी से सेटिंग करना चाहिए। नींबू लेना है, थोड़ा नींबू डाल के भी ले सकते हैं, कोई हार्म नहीं है। अगर अच्छा लगता है, बॉडी में सूट करता है, कईयों को सूट नहीं करता है, तो वो उनकी पर्सनैलिटी के हिसाब से वात पित्त कफ की। सी वाले जरूर लीजिए। नेक्स्ट, संतरा है, आंवला है, अमरूद है, कैल्शियम वाली चीजें देखो सिंपल मसालों में आ जाती है। आपको एक बताता हूँ, नेक्स्ट कैल्शियम हमारा, ये अगर हम मसाला बना के रख दें, तिल है, धनिया है, राई है, हिंग है और जीरा है, इसको मिक्स करके बना के रख दें और हर खाने के ऊपर डालें, तो आपको कैल्शियम जितना चाहिए बॉडी में 800 to 1000 मिलीग्राम इनफ आ जाता है। दूध में ही नहीं रहता है, नहीं तो जो रॉन्ग बिलीफ है, दूध के 10 ग्लास पियेंगे तब डेली का रिक्वायरमेंट होगा और वो कोई पी नहीं सकता। तो हाँ, फोटोकॉपी ये राइट, ओके, कैल्शियम का दे देंगे। नेक्स्ट करते जाइए, बढ़ाते जाइए, ये 3-3 घंटे के केवल डाइट के ही लेक्चर हैं, चलते जाइए। एनर्जेटिक फूड, बढ़ते जाइए। रेशे के बारे में बता दिया, 30 to 40 ग्राम। नेक्स्ट, रोज कुछ ना कुछ अपने योगासन जरूर करिए, नथिंग रॉन्ग, जो आपको अच्छा लगता है, पद्मासन, आपका बैठे बैठे कुर्सी पे भी कर सकते हैं आप योगासन, कुछ घर पे बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, रिलैक्स करिए, चाहे वज्रासन करिए। खाने के बाद हेवी एक्सरसाइज नहीं करना है, केवल एक ही आसन वज्रासन होता है। ये कुछ सिकेडियन रिदम है, नहीं पहले वाला बताइए। कभी भी लेट नाइट गाड़ी इमरजेंसी नहीं है तो मत, ये टाइम सबसे ज्यादा एक्सीडेंट का होता है, उसमें ना चाहते हुए भी नींद आती है। और मैंने देखा कई टूरिस्ट आते हैं, उनको लगता है पूरा दुनिया ही देख ले, इंडिया देख ले, भागते रहते हैं, इंजॉय नहीं करते। टूरिंग मीन्स यू एंजॉय द टेम्पल, हर चीज को, स्पॉट से कुछ नहीं होगा, पर रात को ड्राइव करते हैं और मैक्सिमम एक्सीडेंट इस समय होते हैं, अनलेस इट इज इमरजेंसी, नहीं तो आप रिलैक्स करिए उस समय, फिर सुबह फ्रेश होकर फिर से चलिए। टीवी को भी उतना ही देखिए जितना जरूरी है, सीरियस सीरियल को देखेंगे, लाइफ ऐसे ही सीरियस है, और सीरियस हो जाते हैं, फिर हंसने के लिए हंसने के क्लब में जाना पड़ता है, फिर वहां 50 रुपए देते हैं, हंसते हैं, हो वाह, वापिस वैसे के वैसे आ जाते। जब हंसने का मौका मिले हंसिए, क्योंकि लाइफ तो कॉमेडी है ही। और हंसने वाली मूवी देखिए, वो भी सिलेक्ट करिए कि कौन सी मूवी देखना है, नहीं तो कई लोग और डिप्रेशन में चले जाते हैं, मेरी जिंदगी कटी पतंग है, और कटी पतंग हो जाए। उस समय कुछ अच्छी चीज सुनिए, म्यूजिक भी सुनना है तो अच्छा सुनो ना, अब रोने वाले गीत सुनोगे तो वो आएगा ही आएगा, डिप्रेशन आएगा। हो गया, मेरे ख्याल से टाइम बंद कर देते हैं, ये काफी बड़ा है, फिर मुझे अच्छा वो स्केल फिर से दिखा दूं। हाँ, उस स्केल वो जो था ना, ये लास्ट का ये बता देता हूं, इस पे से क्लियर हो जाएगा। पहला है स्टेबल होम, घर ठीक रखो और अपनी पर्सनल लाइफ को ठीक रखो। जॉब सेटिस्फैक्शन, जो भी जॉब कर रहे हैं उसको इंजॉय करिए। इसीलिए कहा, विनर्स डोंट डू ग्रेट थिंग्स, दे डू थिंग्स ग्रेटली, दे लव देयर जॉब। लीडर कौन बनता है? जो अपने काम को इंजॉय करता है, फ्रस्ट्रेशन जिसको आता है उसी को जॉब स्ट्रेस होता है। हमारे पास एक बहुत बाहर लेडी बैठती है माउंट पांडव भवन के बाहर, शी इज नॉट MBA, शी इज नॉट ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, शी इज अ सिंपल ट्राइबल लेडी एंड शी अर्न विद इन हाफ डे इनफ मनी। कैसे? अच्छी तरह बात करती है, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, आइए डॉक्टर साहब फल खाइए, नहीं है पैसे नहीं है, नहीं नहीं कोई बात नहीं बाद में दे देना। इतना अच्छा बात करती है कि 10 में से 6 व्यक्ति चले जाते हैं और खा लेते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। वहां IQ की जरूरत नहीं पड़ती, पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज योर स्किल एंड दैट इज कॉल्ड जॉब सेटिस्फेक्शन बिकॉज शी इज एंजॉयिंग। लव योर जॉब, ऑनरेबल प्रेसिडेंट सेड, वर्क डोंट किल द पीपल, इट इज द परसेप्शन टुवर्ड्स द वर्क किल द पीपल। नहीं तो 18 घंटे भी काम करते हैं, इंजॉय करते हैं क्योंकि उससे उनको मजा आता है। एक्सप्रेस योर फीलिंग, विजन ऑफ द लाइफ, सेंस ऑफ ह्यूमर, जब मौका मिले उसको नेचुरल करिए। लास्ट, गुड फ्रेंड्स, हॉबीज जरूर करिए, जो बचपन से अच्छी लगती आई है वो मैं दिखाने वाला था पर समय कम था। IPS ऑफिसर्स हैं, 4 IPS ऑफिसर्स हैं, आप देखिए, ही इज ए IPS ऑफिसर, क्या कर रहा है? फिजिक्स पढ़ा रहा है बच्चों को, कहता है ये मेरे को खुशी देता है, मेरे पर्पस को फुलफिल करता है, वो तो मेरा जॉब है, वो तो मेरा टाइटल है, ये मेरे जीवन को खुशी देता है। दूसरे 4 ऑफिसर्स ने क्या किया, उन्होंने कैसेट्स बनाए, एक ने कैसेट बनाए अपने लड़कियों के साथ, एक गाता है कंट्री के लिए, एक गाता है कम्युनल हारमोनी के लिए, एक उसने कुछ रूल्स ऐसे बताए जो लोगों को कंप्यूटर एजुकेशन देता है, कहते इनसे, और ये सब DIG हैं और सीनियर IPS ऑफिसर हैं, ये कहते हैं इससे हमें खुशी मिलती है। आप देखो पुतिन भी जब जाता है, रशियन प्रेसिडेंट, वो क्या करता है? पॉटरी करता है जब मौका मिले, या कंफू कर्राटे की ड्रेस ले जाता है, डालता और कंफू कर्राटे खेलता, ये मेरे को खुशी। बचपन से जो करते आए हम उसको भूले नहीं, हम क्या होते हैं बड़े हो जाते हैं तो उसको भूल जाते हैं। अब मैं मुस्कुरा नहीं सकता, मैं बहुत सीनियर ऑफिसर हूं, चाल भी हमारी बदल जाती है। अरे जो बचपन में थे वो अभी भी हैं, इसीलिए कहा श्री कृष्ण जैसा एक तरफ टफ अर्जुन को सिखा रहा है, दूसरी तरफ श्री कृष्ण चाइल्ड मक्खन खा रहा है, फ्लूट खेल रहा है। वन साइड इज द मास्टर, अनदर साइड इज द चाइल्ड, दोनों चीजें हैं। हम अपने उस एक्टिविटी ट्रैप में इतना फंस जाते हैं कि फिर उसमें से निकल नहीं पाते। तो जब मौका मिले एक्टिविटी ट्रैप में से निकलो, अपने उस बचपन में चले जाइए, बैठ जाइए और इंजॉय करिए। इसलिए कभी कभी आजकल हम लोग एक मेथड निकाली है, बड़े ऑफिसर्स को कमरे में बंद कर देते हैं, एक को एक एक कमरे में, एक कांच लगा रहता बस, बाहर से ताला। क्या करेगा वो कांच के सामने जाके, जो करना है कर, मुंह चिल्ला हंस, क्या होगा? निकलेगा, निकलेगा बाहर, निकलेगा अंदर, बोतल अपनी होगा। तो कुछ ना कुछ अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से जरूर वो चीज करिए जो आपको रिलैक्स करता है, सेंस ऑफ ह्यूमर देता है, पर्पस ऑफ द लाइफ देता है, मीनिंग ऑफ द लाइफ देता है। लास्ट में एक जोक देकर, स्केल कहाँ गया दिखाओ तो है। हाँ नहीं नहीं वो स्केल था ना, एक नहीं वो बोला, चलो मैं उसकी जेरोक्स दे दूंगा, अभी वो ढूंढना पड़ेगा, समय हो गया, मुझे भी नीचे जाना। लास्ट में एक जोक देकर खत्म करते हैं। एक लेडी जा रही है, आजकल कॉस्मेटिक सर्जरी का बड़ा इंपॉर्टेंस हो गया है, जो मैं नहीं हूं उसके ऊपर जोक दे रहा हूं, फिर से पहली स्लाइड पे, हु वी आर एंड हु वी प्रिटेंड टू, पूरा गेम लाइफ का यही अटकता है। तो लेडी जा रही है न्यूयॉर्क में, मैनहट्टन में 5th Avenue में जा रही है, ऊपर से भगवान, 60 साल की लेडी है, ऊपर से आवाज आती है तू 100 साल जिएगी। तो लेडी को बड़ा मजा आ जाता है, मैं 60 साल की हूं अब 100 साल जीऊंगी, भगवान ने कहा तो अब तो मैं एंजॉय करूंगी लाइफ को।
तो गई फटाफट डेंटिस्ट के पास, कॉस्मेटिक डेंटिस्ट के पास, सब दांतों की सर्जरी करा ली, डेंटिस्ट स्माइल बनवा ली, आजकल जो बहुत कॉमन हो गया किस तरह की स्माइल चाहिए, तो पूरी सर्जरी हो जाती है। फिर सर्जन के पास गई, सब पेट का फैट निकलवा लिया, कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, फेस का अपलिफ्टमेंट करा दिया, बाहर निकली तो 20 साल की यंग गर्ल जैसे निकली, जैसे ही थोड़ा चली एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई। भगवान के पास गई, भगवान को बोला तुमने ही तो मुझे बोला था 100 साल जिएंगी, अभी तो 40 साल थे। भगवान ने कहा ओ सॉरी सॉरी, मैं तुझे पहचान नहीं पाया, दिस इज कॉस्मेटिक सर्जरी। चलो अभी हम वापस अपने कमरे में चलते हैं, सब चीजें शट कर देते हैं, ब्रीद इन एंड आउट, सब तरफ से ध्यान हटाकर चेतना शक्ति को दो आंखों के बीच फोकस करें। ये मेरा पर्सनल चैम्बर है, पूरा शरीर रिलैक्स हो रहा है, शरीर मेरा वस्त्र है, मैं एनर्जी दो आंखों के बीच पूरे बॉडी को चला रही हूं, सभी चिंताएं वरीज टेंशंस परमात्मा को दे दे। इसी शक्ति को शरीर के सभी ऑर्गन्स में जाने दें, अनुभव करें शरीर के हर सेल में, हर सिस्टम में शांति के वाइब्रेशन जा रहे हैं। फील इट, अलाउ इट टू फ्लो नेचुरली टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी।
शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है।
एक सेकंड बॉडी में उस एनर्जी को फील करें, वापस ब्रीद इन एंड आउट करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टू योर फैमिली।